ओम शांति। सबका स्वागत है। भट्टी में आए सभी, तो अभी अभी हम सब ने एक गीत सुना, प्रभु आपने हमें अपना बना लिया, हमारे क्या कहने। तो बाबा ने तो हम सबको अपना बनाया, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है उसका, उसको हमने अपना बनाया अच्छी तरह से। बाबा कहते हैं बच्चे जो हैं जैसे हैं मेरे हैं, लेकिन उसी अनुरूप भगवान को हमने क्या अपना बनाया है, उसकी हर बात को जीवन में लाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं। निरंतर वो स्मृति रहती है। अपने आप से अगर हम इस तरह के प्रश्न करते रहें तो भी हम सदा प्रसन्नचित रहेंगे। जब तक हम स्वयं अपने मन को नहीं टटोलते हैं तब तक हमारे संकल्पों का बदलाव नहीं होता है, तब तक हम पुराने संकल्पों के साथ ही जीते रहते हैं। संकल्पों में शक्ति ऊर्जा वो नहीं भरती है। साधारण संकल्प, सामान्य संकल्प, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, वही युद्ध चलती रहती है। इसलिए रोज स्वयं को ही देखना है, स्वयं से प्रश्न करने हैं कि जिस दृष्टि से भगवान मुझे देखता है, जितने उसने मुझे सोमान दिए हैं, जितनी उसने मुझे पढ़ाई पढ़ाई है, जितना वो मुझे प्यार करता है, जितनी सिफतें उसने मेरे में देखी हैं, क्या उस अनुसार मैं उस स्थिति में स्थित रहता हूं। बाबा कहते मेरा हर बच्चा राजा बच्चा है, तो क्या वो हमारे राजाई संस्कार दिन प्रतिदिन अपना प्रभुत्व कायम कर रहे हैं। उन राजाई संस्कारों का हमें स्वयं अनुभव होता है या वही सामान्य प्रजा वाले संस्कार, उन्हीं संस्कारों के अनुसार जीवन तो नहीं गुजरता जा रहा। तो हम सबको ये थोड़ा सा छोटा सा संगमयुग का समय मिला है जिसमें हम स्वयं भगवान के साथ व्यतीत करते हैं। तो इस संगम युग का महत्व, स्वयं के जीवन का महत्व, उसको अगर हम सदा स्मृति में रखते हैं तो परिवर्तन निश्चित है। ये हो ही नहीं सकता कि हमारे जीवन में परिवर्तन ना हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का परिवर्तन तो हो ही रहा है, लेकिन उस परिवर्तन की महसूसता, उसकी स्मृति, उस परिवर्तन के अनुसार हमारी व्यवहारिकता, उस परिवर्तन के अनुसार हमारे बोल, उसके अनुसार हमारे संकल्प, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारा आचरण चरित्र, वो हमें महसूस हो कि हम वो पहले वाले नहीं है, अभी बहुत बदलाव आ चुका है। ये हमारा मन अंदर से गवाही दे कि हम साधारण आत्मा नहीं है। केवल अगर हम इतना भी स्मृति में रखें निरंतर के मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूं, तो भी नशा निश्चित रहेगा। और वो नशा अगर निश्चित रहता है तो संसार की कोई भी आकर्षण हमको आकर्षित कर नहीं सकती। ब्रह्मा कुमार कुमारी की स्मृति में रहने से ही वो सारी धारणाएं अपने आप आने लगेंगी। वो स्मृति में आने से ही हमारी व्यवहारिकता में बदलाव आएगा, हमारी दृष्टि में रूहानियत अलौकिकता अनुभव होगी, हमारा चरित्र, हमारा चाल चलन सब बदलेगा। लेकिन स्मृति, स्मृति में ही सामर्थ्य है। केवल स्मृति लाने से ही परिवर्तन तुरंत आरंभ हो जाता है, लेकिन बाबा कहते हैं उस स्मृति को क्या देना है? योग का धूप देना है, उसको बार बार जल देना है, बार बार रिवाइज करना है, तो वो हमारे संस्कारों में समा जाता है, नहीं तो उथला उथला परिवर्तन महसूस होता है, भीतर से परिवर्तन नहीं होगा। हर कोई चाहता है हमारा आंतरिक बदलाव हो, परमानेंट हो, स्थिति एक रस हो, जो बाबा कहते हैं आजकल जो अव्यक्त इशारे में चल रहे हैं, एक रस अचल अडोल स्थिति के आसन पर सदा रहो, क्योंकि इसमें उसकी बहुत आवश्यकता है। संसार की तरफ हम देखते हैं तो सभी अनुभव करते ही हैं कितनी संसार में परिस्थितियां आ रही हैं। हमारे से आप भी ज्यादा अनुभव भी होंगे कितनी परिस्थितियां हैं संसार में, परिवार की परिस्थितियां हैं, समाज की परिस्थितियां हैं, आर्थिक परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, वैश्विक परिस्थितियां हैं, हलचल ही हलचल है। ऐसे समय में स्वयं को शक्तिशाली बनाकर रखना, एक स्थिति बना के रखना, उस पर थोड़ा गहन चिंतन की आवश्यकता है। पुरानी चाल से भी काम नहीं चलेगा, कुछ तो बदलाव चाहिए, कुछ तो न्यूनेस चाहिए, परिवर्तन चाहिए, स्वयं से संकल्प, स्वयं से प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता है। और प्रतिज्ञा ऐसी नहीं करनी कि हमको वो उस प्रतिज्ञा के हम कर तो लें लेकिन कर ना सके कुछ उसके बाद। छोटे छोटे गोल हम रखें सारे दिन में, जब हम उस गोल को अचीव कर लेते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता धीरे धीरे, चाहे वो गोल 10 मिनट का ही क्यों ना हो, आधे दिन का ही क्यों ना हो, चाहे वो गोल बोल से संबंधित ही क्यों ना हो। जैसे आज के स्लोगन था, क्या स्लोगन था, हर प्राप्ति आगे क्या था आज का स्लोगन, चलो नहीं आता कोई बात नहीं, कल का सुना दो फिर, अच्छा परसों का सुना दो, कोई तो एक ही स्लोगन सुना दो कोई, हर प्राप्ति अनुभव कराने वाले हो, हर प्राप्ति से क्या हो, वचन, हर प्राप्ति हर वचन से क्या हो, प्राप्ति हो किसी, उसको क्या कहेंगे, सत्य वचन। तो एक छोटा सा स्लोगन ही है कि सारे दिन हम केवल अपने बोल पर ही नियंत्रण रख लें तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे हाथ में लग जाएगी, हमारे बोल वो वरदानी बन जाएंगे, वो शक्तिशाली बन जाएंगे, जो बोल बोलेंगे वो सफलता मूर्त हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। तो छोटे छोटे महावाक्य हैं जो हमको कंठस्थ कर देने हैं, ऐसे महावाक्य कोई हमारे पास जो परमानेंट हमारे हाथ में हो, क्योंकि आने वाले समय में ना किताबें रहेंगी, ना मुरलियां रहेंगी, ना इंटरनेट रहेगा, ना यूट्यूब रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। जो हमारी बुद्धि में है, जो मन बुद्धि रूपी पात्र में हमने भर के रखा है, वो ही अंदर से गूंजेगा। इसलिए बाबा कहते हैं रोज रात को अपना मन बुद्धि खाली करके, अपना बोझ सारा बाप के हवाले करके सो जाओ, और उसमें सवेरे उस खाली पात्र में क्या क्या भरना है, ताकि वो ऐसा भरे हम जो सारा दिन उसी मन उसी के इर्द गिर्द विचरण करता रहे, वो ही गूंज अंदर में गूंजती रहे। सवेरे सवेरे हम मन को खाली करके भगवान के आगे बैठेंगे, उस पात्र में भी परमात्म प्यार भरेगा, परमात्म ज्ञान भरेगा, उसकी शक्तियां भरेंगी, वो बरसेंगी ऊपर से। अगर हमने सारे दिन का व्यर्थ साधारण बोल, वही संसार का समाचार अपनी बुद्धि में भर के रखा है, तो फिर योग में बैठते वही संकल्प आएंगे। तो सारे दिन की दिनचर्या में अटेंशन रखते हुए रात को जब भी हम सोते हैं तो बाबा को सारा पोता मेल दे देना है, लेकिन पोता मेल देते देते फिर बहुत सारे ऑब्स्टेकल भी परिस्थितियां भी आ जाती हैं, क्योंकि सभी अनुभवी हैं, अंतिम माया एक ही है, और वो कौन सी है, माया का अंतिम रूप कौन सा है, बोल नहीं रहे दबी आवाज से, माया ने दबा के रखा है, बोलो जोर से, मोबाइल। ऐसे बोले जैसे हम आपसे छीन लेंगे, तो थोड़ा खुल के बोलो, तो घरेलू बात है ना, क्योंकि हमें उन चीजों से मुक्त होना है। बाबा कहते हैं साधन तो तुम बच्चों के लिए है, इनका जमकर सदुपयोग करो, लेकिन वो साधन हमारी साधना का हिस्सा ना बन जाएं, वो साधन हमारी साधना के ऊपर आधारित ना हो कि वो हैं तो हमारी साधना ठीक हो। इसलिए अपने मन बुद्धि को इतना ज्ञान रत्न से भरपूर कर लेना है, ताकि हम जब भी जहां जिस पॉइंट को लेकर चाहे चिंतन कर सके, मनन कर सके, अपने मन बुद्धि को स्थिर कर सके, मन को वहां लगा सके, मन को दिशा दे सके, मन हमारे हाथ में आ जाए। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस, लंबे समय की प्रैक्टिस। सबसे पहली प्रैक्टिस तो हमें स्वयं की कि सचमुच मैं आत्मा हूं, ऐसा अनुभव होता है, वो एक गहरी अनुभूति। आत्मा कैसे अनुभव करें, कैसे अनुभव करें? बाबा तो कहते थे अपने को आत्मा समझो समझो समझो, कैसे समझे, क्या तरीके हैं उसके? कुछ तरीके होने चाहिए हमारे साथ ना, कि सोचा और हम उसमें स्थित हो जाए। उसके लिए कोई प्रैक्टिस होनी चाहिए हमारे हाथ में। तो क्या प्रैक्टिस करें? जिससे चलते फिरते वो सहज अनुभव हो, जिससे चलते फिरते देह में रहते भी विदेही का अनुभव, देहदारियों को देखते भी आकर्षण ना हो, भले संबंध संपर्क में आ रहे हैं लेकिन वो आकर्षण ना हो, एक दूसरे के आशिक माशुक ना बन जाए, जैसे आज बाबा ने कहा। तो क्या ऐसी कोई प्रैक्टिस की जाए कि हम उसमें स्थिर हो जाए एकदम, उसमें अचल अडोल रहे, उसमें अंगद हो जाए एकदम? क्या प्रैक्टिस करें उसके लिए? कि वो निरंतर हमको स्मृति रहे। बताओ, सुमान में रहें और चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि खाली सुनने से कुछ परिवर्तन नहीं होगा, खुद ही कुछ तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है उसके लिए हमारे सामने ब्रह्मा का एग्जाम्पल ही है, रोज लिखना है और वो किसी को बताना नहीं है, अपने पास ही कॉपी रखनी है। और ऐसा नहीं हमको 100 वाला लिखना, 200 वाला लिखना, गिनती नहीं करनी, क्वालिटी क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। भले दिन में 10 बार ही लिखो, 20 बार ही लिखो, 21 बार ही लिखो, लेकिन अनुभूति के साथ धीरे धीरे लिखना है, प्यार से लिखना है, जैसे सचमुच आत्मा शरीर से लिखवा रही है वो। ऐसे नहीं हमको कॉपी भर के दिखानी है किसी को, दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हमें स्वयं का बदलाव करना है तो स्वयं के साथ ही सच्चाई सफाई से वो पुरुषार्थ के आगे हमारे कदम बढ़ते रहने चाहिए। सारे दिन में पहले हमको ये देखना हमारा टाइम कहाँ कहाँ जा रहा है। जो टाइम हमारा वेस्ट जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है, पर चिंतन में जा रहा है, डिजिटल में जा रहा है, पहले तो उसको देखना है। उसकी जगह हमको पुरुषार्थ क्या क्या हम कर सकते हैं, और पुरुषार्थ भी वो जो हमको जो हमारा सहज हो, स्वाभाविक हो, भारी पुरुषार्थ नहीं, जो चीज सहज स्वाभाविक होती है वो सदा काल के लिए होती। बाबा कहते हैं बोलेंगे 108 बार सोमान लिखो, सबके बस की बात नहीं, क्योंकि सबको अपने काम धंधे भी हैं, सबको फ्री थोड़ा नहीं है, लेकिन सहज नेचुरल। तो सबसे पहले पुरुषार्थ अपना स्वयं का, मैं कौन हूं, ये लिखना ही है, जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा ने लिखा है। हम सोचते हैं लिखने से क्या होता है, लिखने से बहुत कुछ होता है, लिखने से हमारा आंतरिक बदलाव होता है। खाली सोचते हैं तो बुद्धि के भटकने के चांसेस हैं, जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो हमारी सारी कर्मेंद्रियां सूक्ष्म और स्थूल इन्वॉल्व हो जाती है उसमें, हमारी एकाग्रता शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, मन स्थिर होने लगता है, स्टेबल होने लगता है। तो लिखना एक, जैसे स्कूल में हम जाते हैं तो कितने सब्जेक्ट होते हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडी, संस्कृत, उर्दू, ड्राइंग, कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो हमारी स्टूडेंट लाइफ है ये, हमारे साथ ही कम से कम 5-7 तो नोटबुक होनी चाहिए हमारे पास में, एक थैला होना चाहिए लटका हुआ जैसे रखा हुआ है, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट, ये आत्मा का सब्जेक्ट है, ये परमात्मा का, ये योग का, ये प्यार का, खुद ही सब्जेक्ट तैयार करने हैं, क्योंकि किताबें तो रिसर्च बहुत होगी, वो हमको बनी बनाई मिल जाएंगी, हर एक टॉपिक के ऊपर किताब मिल जाएगी, लेकिन मैंने खुद कहाँ किया तैयार, वो तो हम बना बनाए ले रहे हैं सारा। सारी अव्यक्तवाणी का सेट ले लीजिए, खुद उससे लिख लीजिए। ऐसे हम काली देख रहे थे, सगाई सब्जेक्ट के ऊपर लिखना चाहिए, हमारी सगाई किससे हुई है। तो काल बहुत अच्छा, एक ग्रुप में चिंतन करते करते किसी भाई ने बताया कि बाबा ने भी मुरली में कहा था 2022 की, कि बच्चे गुपचुप तरीके से आपस में सगाई कर लेते हैं, मुझे बताते भी नहीं है। तो बाबा का हमारे प्रति कितना प्यार है, देखो कि सगाई मेरे से हुई है, मुझे याद नहीं करते हैं, एक दो के आशिक माशुक बन जाते हैं। आज की मुरली में था ना प्रेत बुद्धि वालों की निशानियां। तो पहला आत्मा लिखना है, दूसरा आत्मा के बारे में सुनना है, क्लासेस पुरानी दादियों की, जो भी हमारे यज्ञ के आधार मूर्तियां हैं, पुरानी दादियों की क्लासेस में बहुत पावर है, बहुत एनर्जी है, बहुत शक्ति भरी है, ऊर्जा भरी है उसमें, बहुत प्योर वाइब्रेशन भरे हुए हैं। लेकिन वो अनुभव करने के लिए हमारा मानसिक धरातल भी तो वैसा होना चाहिए ना। मानसिक धरातल ही हमारा शुद्ध नहीं है तो बाबा के महावाक्य भी हमको साधारण ही अनुभव होते हैं। इसलिए सबसे पहले तो हमें मन का शुद्धिकरण करना है। तो पहला लिखना, दूसरा सुनना, तीसरा मुरली जो हम पढ़ते हैं आत्मा के बारे में बाबा ने क्या कहा सारा अलग कर दो उसको, क्योंकि टाइम तो हमारे पास बहुत है। टाइम की कमी है किसी को? किसी को कोई टाइम की कमी नहीं है। सबसे ज्यादा टाइम हम ब्राह्मण बच्चों के पास में है, लेकिन उस टाइम को हम सही दिशा में लगाएं, उस टाइम को हम सदुपयोग करें, उस समय को हम वरदानी बना लें, वो हमारी उन्नति का साधन बन जाए। तो लिखना, सुनना, पढ़ना, फिर उसका चिंतन करना, उसके ऊपर आत्मा के ऊपर चिंतन करना। क्या चिंतन करेंगे? क्या चिंतन करेंगे आत्मा के ऊपर? आत्मा के गुणों के बारे में चिंतन, और कि मैंने अभी मुझ आत्मा का पार्ट पूरा हो गया, अभी अब वापस घर जाने का टाइम है, मैं तो टेम्पररी शरीर में बैठा हुआ हूं, अब ड्रामा पूरा हो गया है, बस आज की रात अंतिम रात है, या आज की क्लास ही अंतिम क्लास है, ये भी सोच सकते हैं। अब हमारी यात्रा पूरी हुई, मुसाफिरी पूरी हुई, हम इस संसार में मुसाफिर हैं। तो मुसाफिर जाता है तो कहीं अटैचमेंट नहीं है, मेहमान के अटैचमेंट नहीं है, बस मुझे तो ये देह को ही छोड़ के जाना है। ये तो असौभाग्य जो इस अंतिम जन्म में इस देह में बैठ के हमें साधना करने का ये गोल्डन डायमंड चांस मिला है। इस पुरानी देह का भी धन्यवाद कि इसमें बैठकर मैं आत्मा अपने आप को पावन बना रही हूं, इस देह में बैठकर मैं आत्मा अपने आप को 84 जन्मों के लिए इतना भरपूर कर रही हूं, परमात्म प्यार का अनुभव कर रही हूं, क्योंकि जो हमारा पुरुषार्थ है ना वो हमारे दैहिक स्तर पर दिखाई देना चाहिए। जो भी हमारी संवेदना है, जो अंदर के मन के भाव है, वो कहां दिखाई देते हैं? हमारे अंदर के, वो बाहर दिखाई देने चाहिए। जैसे किसी को कुछ बोल दे तो कैसे आंसू आ जाते हैं, कैसे भाव प्रकट हो जाते हैं बाहर। तो परमात्म प्यार के भाव भी हमारे चरित्र से, चित्र से प्रदर्शित होने चाहिए। इसलिए लिखना, सुनना, पढ़ना, चिंतन करना, और दिन प्रतिदिन उस चिंतन को गहरा करना है। ऐसा नहीं आज चिंतन कर लिया, नहीं, जहां आज चिंतन छोड़ा कल से फिर वहीं से चालू कर देना है, और लिख ले लास्ट लाइन में चिंतन कहां छोड़ा है, फिर अगले दिन वही चिंतन चालू कर देना, वहां से आगे, फिर आगे 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 आगे। यात्रा पर जाते हम कहीं ठहर थोड़ा नहीं जाते, आगे आगे बढ़ते जाते हैं ना, कहीं रात को रुके फिर अगले दिन आगे जाते कि नहीं जाते हैं, पीछे जाते हैं वापस, हटते हैं वहां रुकते हैं, नहीं, हमारी भी यात्रा है, हमें पहुंचना अपने घर में, रास्ते में बहुत सारी समस्याएं परिस्थितियां क्रॉस करनी है, हिसाब किताब क्रॉस करने हैं, तो हमें रुकना नहीं है। उसके गहराई से चिंतन करना है, आत्मिक चिंतन, वो अनुभूति और स्पर्श हो। और चौथी तीसरी चौथी बात होगी आत्मिक चिंतन। और क्या करेंगे आत्मा के बारे में, आत्म अनुभूति के लिए? बताओ बताओ कुछ। हाँ, स्वयं को विजुलाइज करना है। और जहां भी हम बैठे हैं, कहीं अकेले बैठे हैं, घर में बैठे हैं, तो विजुलाइज करो कि संसार के सब सितारे जगमगा रहे हैं यहां बैठे बैठे, क्योंकि जब चेहरा दिखाई देता तो चेहरे से संबंधित विचार चलना संभव है। लेकिन जब हमको संसार के चेहरे अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो कम से कम यहां बैठ के तो सोच सकते हैं ना कि संसार इस स्थूल वतन में भी संसार में आत्माएं जगमगा रही हैं। वो बैठे बैठे चिंतन करें, या जो भी पीछे बैठे हुए हैं या जो भी आगे बैठे हुए हैं, सब आत्माएं जगमगा रही हैं। अंदर ही अंदर प्रैक्टिस हमारी होगी, योग अभ्यास होगा, वो प्रैक्टिस धीरे धीरे हमारी परिपक्व हो जाएगी। जब परिपक्वता आ जाएगी तो हमारा स्वभाव संस्कार भी वो नेचुरल हो जाएगा, वो व्यवहारिकता भी नेचुरल। उस व्यवहारिकता में रूहानियत आएगी, उस बोल में प्योरिटी आएगी, अलौकिकता आएगी, दूसरों को परिवर्तन करने की वो ताकत आएगी, अनुभव कराने के वो वाइब्रेशन आएंगे। जब हमारी अंदर ही अंदर स्वयं की वो प्रैक्टिस पक्की होगी तो ये था आत्मिक चिंतन। तो आज की मुरली बाबा ने प्रीत बुद्धि की 6 निशानियां बताई। कौन सी? सबसे जो हमारे जीवन की संजीवनी बूटी है वो है मुरली, मुरली में डूब जाने का है। डूब के क्या करना है? मुरली में डूब के मर जाने का है। मरना तो है ही है ना, कि नहीं मरे? अभी मरे हुए हैं तो बोल कैसे रहे? स्वयं को मरजीवा बनाने की विधि है मुरली में डूब जाने का। तुरंत मुरली से प्रीत नहीं होती है, उसको जबरदस्ती पकड़ना पड़ता है, जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है। हाँ, फिर नए तरीके से पढ़ेंगे, अलग अलग एंगल से उसको देखेंगे, अलग अलग उसमें मेथड ढूंढेंगे, अलग अलग कोई टॉपिक ढूंढेंगे, तो मुरली से धीरे धीरे हमारी प्रीत बढ़ने लगेगी। तो धीरे धीरे हमारा उसका गहरा प्यार, उसका मंथन चिंतन की आदत परिपक्व होने लगेगी। तो मुरली जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, वो मुरली के बिना योग लगेगा ही नहीं, पावर नहीं आएगी उसमें। तो मुरली में डूबना है तो कम से कम मुरली के डेली 7-8 पॉइंट तो हमारी बुद्धि में आ जाने चाहिए। और 7-8 पॉइंट, चलो 7-8 छोड़ दो, 5 पॉइंट याद कर लिए आज, 5 कल कर लिए, एक महीने के बाद कितने हो जाएंगे? 150 पॉइंट हो जाएंगे। तो 150 पॉइंट हमारी बुद्धि में समा जाए तो कितना परिवर्तन हो जाएगा, हलचल आ जाएगी दुनिया में। तो हलचल क्यों नहीं हो रही है? उसका कारण हम स्वयं ही है, क्योंकि हमारा मन के अंदर वो हलचल अभी तक हुई नहीं है। वो परमात्म प्यार के वहां जहां रतन ठहर जाएं, जीवन में परिवर्तन ना हो ही नहीं सकता है। बाबा कहते विनाश का समय है, अभी ये समीप है, बिल्कुल विनाश का समय दस्तक दे रहा है, खड़ा भी नहीं। अभी बार बार हमको सचेत कर रहा है, जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ, लेकिन हमारी पुरानी आदतें हमको बेड़ियों के अंदर उनके बांध के रखा हुआ है। पुराने संस्कार, जो कठोर संस्कार है, कुंठित संस्कार है, जो मन को कलुषित करने वाले संस्कार हैं, मन को वेदना देने वाले संस्कार हैं, उन्हीं से हमने प्रीत करके रखी हुई है। पता भी है हम, ये संसार हमको बार बार धोखा दे रहे हैं, इन संस्कारों से बार बार हमारी स्थिति गिर रही है, और उन संस्कारों को परिवर्तन करने का भी पता है हमको कि इन संस्कारों को ऐसे परिवर्तन करना। ऐसा कोई भी ब्राह्मण आत्मा नहीं है जिनको अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि मालूम नहीं है, वो प्रक्रिया से गुजरने का भी सारा पता है। लेकिन थोड़ी सी सावधानी चाहिए, थोड़ा सा अटेंशन चाहिए, स्वयं के ऊपर रहम दिल। बाबा ने कहा नॉलेजफुल भी बन गए हो, मर्सीफुल भी बन गए हो, लेकिन स्वयं के ऊपर मर्सीफुल नहीं। हम सोचते हैं दूसरों पर हम क्या, दूसरों को रहम करना है, दूसरों को बाबा का संदेश देना है। वर्तमान में स्वयं को शक्तिशाली बनाने की बहुत आवश्यकता है। स्वयं को शक्तिशाली बनाएंगे, दूसरे तो देख के शक्तिशाली बन जाएंगे। स्वयं की स्थिति लड़खड़ा रही है, दूसरों की स्थिति भी हमें देख के लड़खड़ाती रहेगी, भले हम जितना भी ढिंढोरा पीटते रहें। तो परिवर्तन स्वयं से करना है। तो प्रीत बुद्धि की 6 निशानियां कौन बताएगा, कौन कौन सी थी? हाँ, पहला था 1-2 के आशिक माशुक नहीं बना, उसमें भी 2 बातें थी, पहले सेंटेंस में भी 2 बातें थी। भट्ठी में आया ना कुछ तो परिवर्तन करना, भट्ठी माना ही परिवर्तन। कौन सी 2 बातें थी? जो बाप से प्रीत बुद्धि होंगे वो दुनियावी बातों में उनका बुद्धि उग नहीं जाएगा, या दूसरी बातें उनकी बुद्धि में ठहरेंगी नहीं, और 1-2 के आशिक माशुक नहीं होंगे। दूसरी बात, हाँ जी, ददीची ऋषि मेरे वो 5वां नंबर है। दूसरा नंबर क्या था? हाँ, वो सदा विजय होंगे, विजय बनना अर्थात -- सतयुगी महाराजा महारानी बनना। तीसरा, वो प्रीत बुद्धि बाप से सच्चे हुए कभी कुछ छिपाएंगे नहीं, छिप नहीं रह सकते। चौथा, चौथा वो था और पांचवा वो और छठा वो था। छठा तो बोल दिया, चौथा क्या था? वो अमृत वेले उठकर बाप को, अब हम फाउंडेशन को भी भूल गए अपने, बताओ। अमृत वेले उठ के बाप को बड़े प्यार से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? कैसे प्यार से कैसे याद करते हैं? कैसे याद करेंगे प्यार से? ओहो, बाबा ने अपना एग्जाम्पल दिया कि सवेरे उठ के बैठता नहीं तो मजा नहीं आता है, तो सवेरे उठकर बड़े प्यार से करेंगे। पांचवा, दधीचि ऋषि की मिसल सर्विस में अपनी हड्डियां लेंगे। और छठा, दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गवाएंगे। तो क्या हमारी प्रीत केवल बाबा से प्रीत नहीं करनी है, बाबा से प्रीत नहीं करनी, किससे करनी है? बाबा के ज्ञान से प्रीत करनी है, बाबा के यज्ञ से प्रीत करनी है, उससे तो अपने आप ही हो जाएगी। जैसे कोई आशिक माशुक चिट्ठी लिखते हैं, तो चिट्ठी लिखता है तो 1-2 की चिट्ठी कैसे पढ़ते रहते हैं बार बार, वो चिट्ठी में सब चेहरा दिखाई देता है ना? किसी ने अनुभव किया है? नहीं किया किसी ने? तो चिट्ठी लिखी नहीं बाबा को कभी भी? आपने सोचा पुरानी बातें बोल रहा हूं मैं तो बाबा को चिट्ठी लिखनी है। कैसे चिट्ठी लिखेंगे? योग का बहुत बढ़िया तरीका बाबा को चिट्ठी लिखना, सर्व संबंधों से चिट्ठी लिखना। तो कैसे चिट्ठी लिखेंगे? माना एक साजन अपनी सजनी को चिट्ठी लिखता है, या एक सजनी अपने साजन को चिट्ठी लिखती है, तो हम तो बाबा की कौन है? सजनी है। तो एक सजनी अगर साजन को चिट्ठी लिखे तो क्या लिखेगी? सबसे पहले क्या लिखेंगे? पहले तो प्रभु में शांति लिखेंगे ना। अच्छा, फिर डेट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? बाबा नहीं, साजन है वो, हम उसकी सजनी है। कुछ नवीनता चाहिए, प्यार हमारा गहरा होना चाहिए ना एकदम। माई डियर, ओ माई डियर लव, नहीं हिंदी में लिखने का, इंग्लिश प्यार नहीं, इंग्लिश प्यार खराब होता है हिंदी वाला प्यार चाहिए। हिंदी के प्यार में गहरा अनुभव होता है। बाबा हिंदी है ना, हिंदी बिंदी है, सिंधी है। प्राणेश्वर, क्या तुमने प्राण ले लिए मेरे? और मेरे परम प्रिय साजन, मैं आपकी सजनी, फिर आगे अपना नाम। इतने वर्षों से मैं आपका ज्ञान सुनते सुनते सुन हो गई हूं तो क्या लिखेंगे और क्या लिखेंगे? आपके ज्ञान ने मेरे जीवन में कितना बदलाव किया है, मेरे सारे दुख दर्द हर लिए, आप मुझे कितना प्यार करते हो, मेरे पर कितनी कृपा बरसाते हो, रोज मुझे वरदानों से भरपूर कर देते हो, रोज मेरा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हो, रोज मुझे नजरों से निहाल कर देते हो, मुझे अपनी पलकों में समा लेते हो। अब आगे आप बताओ, ये बाबा को नहीं कह रहे, आपके लिए बोल रहा हूं। आगे क्या लिखना, क्योंकि थोड़ा ना बाबा से हमारी नजदीकियां बढ़नी चाहिए, कला से हमारी सारी ऊपर ऊपर से चली जाती है। जो हमारा प्यार का जो फाउंडेशन है, एक बिल्कुल गहरा दिल से जिगरी प्यार, जिसको आज के मूल्य में जिगर शब्द था, जिगरी प्यार, वो थोड़ा बढ़ना चाहिए। तो आगे क्या लिखेंगे, आप कितने सुंदर साजन, सलोने साजन हो। आगे बोलो बोलो सजनिया, इधर की सजनिया बोलो, इधर मूछों वाली सजनिया बोलो। बताओ बताओ आगे क्या लिखेंगे, कितने बाबा के साथ हमारे संबंध है। अगर खाली हम बाबा को रोज एक संबंध से पत्र भी लिखे ना, तो भी परिवर्तन हो जाए, हमारी अनुभूतियां गहरी होती जाएंगी। क्या लिखेंगे आगे, तो है लिख डालेंगे आगे सब कुछ। वाह वाह वाह, ए मेरे प्रीतम सौदागर, मेरा दिल आपने ले लिया है और मैं आपका दिल ले रही हूँ, तो कितना अच्छा। ये तो प्रीतम को लिखनी है, ए मेरे प्रीतम, मैं आपकी प्रियतमा, है ना। और गीत भी लिख सकते हो उसको, तो आप मुझे कितना प्यार करते हो, बार बार मुझे घड़ी घड़ी याद करने के लिए कहते रहते हो, लेकिन मैं घड़ी घड़ी व्हाट्सएप ही देखती रहती हूँ, मोबाइल ही देखती रहती हूँ, फिर भी अगले दिन मीठे बच्चे कहते हो, मेरी कमी कमजोरियों को नज़रअंदाज करके फिर भी मुझे आप प्यार करते हो, रोज मुझे याद प्यार नमस्ते कहते हो, इतना ऊंचा ऊंचा ज्ञान देते हो, लेकिन फिर मैं मोबाइल में घुस जाती हूँ जाके, अब करो तो करो क्या। तो हमारे थोड़े रिश्ते गहरे रिश्ते होने चाहिए, बाबा के संबंध साजन के साथ, पिता के साथ, वो हमारा पिता है। बाबा कई बार जिक्र करते मुरलियों में, संसार का पिता तो कहां नरक में धकेल देता है, विषय सागर में डुबो देता है, और बाप तुमको क्षीर सागर में ले जाता है, सचखंड में ले जाता है। तो ये बाप हमको कितना ऊंचा बरसा दे रहा है, कितनी ऊंची प्रॉपर्टी दे रहा है, कितनी ऊंची संपत्ति दे रहा है। आज भी हमको संपत्ति दी, कौन सी, आय के मूल्य में संपत्ति शब्द था, कहां था, सर्वशक्तियों की संपत्ति, आगे वरदान था ना आज का। और दिन में किसी ने कुछ बोला वो सारी बातें याद होंगी, सर्वशक्तियों की संपत्ति को दान करने वाले दाता, विदाता, वरदाता बाबा। तो बाबा से हमको सर्वशक्तियों की संपत्ति मिली है, क्या वो संपत्ति मेरे पास है या ऐसे ही खाली बाहर ही लिखा हुआ है कि इस खजाने में सर्वशक्तियों की संपत्ति है, और गेट खोले तो सारा अंदर खाली दिखे। बोल में है सर्वशक्तियां मिली हैं, लेकिन अंदर में कौन सी शक्तियां, वो है ही नहीं। वो सारी शक्तियां हमारे क्या हमको स्मृति में है, वो सारे गुण हमको स्मृति में है। बाबा ने कहा मैं तुम बच्चों को अपने समान महिमावान बनाता हूं, कल की मुरली में था। क्या वो सारी महिमा हमारे में दृष्टिगोचर हो रही है, दिखाई दे रही है दिन प्रतिदिन, दूसरों को दिखाई देना नहीं, स्वयं को तो महसूस होनी चाहिए थोड़ी बहुत। क्या वो मेरे पास सारी शक्तियों का खजाना है, वो स्टॉक भरपूर है, अगर नहीं है तो कैसे मुझे उसको बढ़ाना है, कैसे मैं किसी का सहयोग लूं। बाबा ने आज तो ये भी बोला है तुम्हें बाप से भी सहयोग नहीं लेना है, ये शोभता ही नहीं है। सर्वशक्तियां मिली है बाप से, तुम्हें ना आशीर्वाद की जरूरत है, ना मदद चाहिए, ना सहयोग चाहिए, ना शक्ति चाहिए, क्योंकि मांगना शोभते नहीं है। मांगने वाले संस्कार तो भगतों के, भिखारियों के हैं, भावात्म को हमेशा अपने समान बिठाकर देखने जाते हैं कि बच्चे मेरे तुल्य हैं, मेरे समान बने, लेकिन फिर भी हमारी जो मंशा अभी तक भी लेने की बनी हुई है। हमेशा हमको पहले तो सबसे पहले एक्सेप्ट ये करना है कि हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ माना सब कुछ, फिर उस पर चिंतन करना है। खाली सोचने तक पर्याप्त नहीं होगा, उस पर चिंतन करना है कि क्या क्या मेरे पास है। अगर उसने कहा कि तुम सर्वशक्तियों से संपन्न हो तो हो, तो कौन कौन सी शक्ति हमारे पास वो देखनी है, उसकी लिस्ट तैयार करनी है। बाबा कहते जैसे पिछले संडे के मूल्य में था कि तुम बच्चों को कितने सोमान मिले हुए हैं, अगर वो सोमान की माला पहन के रखो, एक एक सोमान को भी सिमरो तो भी समर्थ बन जाएंगे, तो भी सोमान दाता की हमेशा स्मृति बनी रहेगी। टाइम तो ऐसे भी जाता है, संगम युग तो टाइम कम पड़ जाता है, तो सारी शक्तियां क्या मेरे पास हैं, कौन कौन सी शक्तियां हमें मिली हुई हैं। हाँ, समाने की शक्ति परसों के वरदान में था, सब तीन चार दिन पहले के वरदान में था कि समाने की शक्ति की बहुत आवश्यकता है। अगर किसी ने कुछ बोल दिया, क्योंकि एक एक शक्ति फिर काम करना है, अगर किसी ने समझो किसी के बारे में कुछ बोला हमको और हमको वो सुनना भी पड़ा किसी कारणवश, तो हम आगे उस बात को फैलाए नहीं। क्या वो समाने की शक्ति मेरे पास है? घर में कोई भी बात होती है कि उस बात को हम फैलाते हैं बाहर कहीं? नहीं फैलाते हम। तो संसार में भी समाने की शक्ति है, वो जो लौकिक परिवार में है। हम तो परमात्म परिवार के, ईश्वरीय परिवार के, प्रभु परिवार के हैं, तो समाने की शक्ति तो उसने वरदान दिया हमें। तो समाने की शक्ति क्या वो कार्य पर समय पर कार्य करती है? वो शक्तियां समय पर स्मृति में आती हैं। समय पर स्मृति आना ही तीव्र पुरुषार्थ है, बाबा कहते हैं। तो पहले तो स्मृति चाहिए, ये कौन कौन सी शक्तियां मेरे पास में है, समाने की शक्ति और सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, सामना करने की शक्ति, खत्म होगी। स्नेह की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, परिवर्तन शक्ति, महसूसता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, ऐसे सौ शक्तियां लेनी चाहिए। कितना हमारे पास होमवर्क करने के लिए पड़ा हुआ अभी तक। इसलिए एक एक सब्जेक्ट शक्तियों का, एक कॉपी शक्ति, उसके ऊपर शक्तियों पर चिंतन करते रहना। तो धीरे धीरे वो संपत्ति अनुभव कि मेरे पास वो संपत्ति है, सर्वशक्तियों की संपत्ति, तभी तो हम दूसरों को दान कर सकते हैं। हमारे पास अगर कुछ है ही नहीं है तो दूसरों को दान क्या करेंगे हम? दान माना हमारे वाइब्रेशन ही, करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सूर्य तो निरंतर वो चमक ही रहा है ना, वो तो दे ही रहा है रोशनी। हमको ये भी सोचने की आवश्यकता नहीं कि हमको दान करना है, क्योंकि हमारी तस्वीर में वो हमारी वृत्ति में वो चला गया है, तो वो स्वतः ही वाइब्रेशन अपने आप ही जाते रहेंगे। जहां से हम गुजरेंगे वही वाइब्रेशन अपने आप ही काम करेंगे। जैसे यज्ञ इतिहास में हम सुनते हैं शुरू से कि ब्रह्मा बाबा और दादियों का साक्षात्कार होता था, वाइब्रेशन काम करते थे, खींचते थे, खिंचावट होती थी, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ। तो हम कौन है? हम तो उसी फैमिली के हैं ना, उसी परिवार के ना, हमारे ऊपर भी तो किसकी दृष्टि पड़ी है? उसी भगवान की तो पड़ी है ना, उसी ने तो हमारा हाथ थामा है, उसी ने तो हमको अपना बनाया। लेकिन प्रश्न फिर वही आ गया, क्या क्या हमने उसको अपना बनाया अच्छी तरह से, जो शुरुआत में शुरू किया? तो बाबा को हमने कितना अपना बनाया है, उसको ज्ञान, उसके ज्ञान को हमने कितना समझा है या समझने का प्रयास कर रहे हैं, और ये ज्ञान अंतिम श्वास तक ही समझते रहना है। अंतिम श्वास तक ही ज्ञान के बहुत सारे राज खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे, उससे पहले खुलने वाले नहीं है। कई राज तो राज ही रह जाएंगे और उसी में उसका उसकी शोभा है। नहीं तो कई दफा ऐसे भी होता है, कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो बड़े, जिनमें बड़ा रहस्य समाया हुआ अभी भी उनमें क्लैरिटी नहीं है, लेकिन उन प्रश्नों को जानने से हमें कोई फायदा भी नहीं है। फायदा एक बात में ही है, आज ही बाबा ने कहा, किसमें? बाप को याद करने में। और याद कैसे करना है? प्यार से। कितने प्यार से? कितना किलो प्यार? कितना? जैसे आशिक माशुक। और कब करना प्यार से याद? अमृत वेले, और दिन में क्या करना है फिर? दिन में याद नहीं करना, बताओ तो दिन में क्या करना है? जब भी मौका मिल जाए बस बैठ जाए कोने में जाके, कोई देखे ना, वहां पत्र लिखो बाबू को आराम से, प्यार से सामने तस्वीर रखो या एक तस्वीर जेब में, और छुप छुप के देखते रहो उसको, नए नए तरीके से याद करना उसको, कभी झाड़ के पीछे जाके उसको देखो संसार में कैसे प्यार करते हैं। तो शुभ शुभ के आज हम बगीचे में जा रहे हैं आशिक माशुक मिलने के लिए, वहां झाड़ के नीचे बैठ के उसको पत्र लिखो प्रकृति के सानिध्य में, कितने ज्ञान योग के नए नए तरीके हैं। क्योंकि हमें अपने जीवन में जब तक नवीनता नहीं हमने लाई तब तक परिवर्तन की गति धीमी रहेगी, पुरानी चाल, क्योंकि समय बदल चुका हुआ है। आत्मा को नवीनता चाहिए, उतना समर्थ नहीं है अभी आत्माओं में कि 4 घंटा योग एक जगह बैठ के बात कर लो, वो पुराने जमाने की अभी वो खुराक नहीं रही, उसमें उतनी ताकत नहीं है, चाहे वो खाने पीने की चीजें कुछ भी है, सारी चीजें रासायनिक खादों से भरी हुई है, बीमारियां उनमें कितनी है। तो हमको अपने जीवन को ही कर्मयोगी जीवन, बाबा कहते हैं तुम 2 घंटे 4 घंटे के योगी नहीं, योगी जीवन वाले हो, श्वास को 1-2 मिनट का थोड़ा नहीं है, 1-2 घंटे का थोड़ा नहीं है, सदा काल का है ना। तो श्वासोश्वास बाबा की स्मृति हमारी निरंतर बनी रहे, अखंड योगी, निरंतर योगी, उसके लिए स्वयं को रास्ता तलाशना है, कैसे मैं निरंतर योगी रह सकता हूं। तो बाबा से जो हमको प्राप्ति है उसको स्मृति में रखना बार बार। और क्या कहा आज की मुरली में बाबा ने? पोजीशन, और हाँ पोजीशन की बात भी थी, और इधर से कुछ कलश को छलकाओ थोड़ा, क्योंकि जो हमको ये टाइम मिला है भट्टी में आने का बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो 3 दिन हमारे पास में है, शनिवार तक, शनिवार को वापस जाएंगे ना, तो बुध वीर शुक्र 72 घंटे हमारे पास में है। तो 72 घंटे में हमारे पास 72 ज्ञान के ऐसे बिंदु हो जाने चाहिए जो परमानेंट हमारे हाथ में हो, कभी जिंदगी में भूले ही ना, 72 लाइनें याद कर लें, कुछ 72 सोमान लिख डालो या 72 शक्तियां और गुण लिख लो, बार बार उसको रिवाइज करो, रिकॉल करो, वो छप जाए अंदर में, उनके वाइब्रेशन ही आत्मा को नचाते रहे अंदर में, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती रहे अंदर में, अंदर ही अंदर आत्मा को ज्ञान योग के पंख अपने आप ही काम करें। बाबा ने कहा मैंने तुम बच्चों को ज्ञान योग के पंख दिए, तुम्हें एक ही काम करना है, सुदर्शन चक्र बन के उसको फिराते रहो। सबसे बड़ा शस्त्र बाबा ने हम सबको दिया कौन सा? सुदर्शन चक्रधारी बनो, कल के मुरली में आएगा, उससे हमारे सारे पुराने संस्कारों के गले कट जाएंगे, हम मुक्त हो जाएंगे, आत्मा जो पिंजरे में कैद है वो मुक्त हो जाएगी। तो जो हमारी सात्विक नेचर है, जो हमारी प्योर नेचर है, जो हमारी पवित्र संस्कार हैं, वो हमको अनुभव होने लगेंगे। तो बाबा हम सबको क्या बनाने आए हैं? मनुष्य से देवता, तमो प्रधान से लक्ष्मी से ये लक्ष्मी से नारायण बनेगी सभी सारा गड़बड़ कर दी नास्तिक से पुण्य से अच्छा पुण्य आत्मा बनाने हैं, ठीक है, पुजारी से ठीक है। तो ये तो खेल था, एक बहुत सारे ऐसे खेल भी किए जा सकते, ताकि थोड़ा जब भी मुरली क्लास है तो थोड़ा सारे एक्टिव रहने चाहिए, किसी एक भी व्यक्ति की आंख नहीं बंद होनी चाहिए, नए नए तरीके से मुरली सुनानी है, ताकि मुरली में रोचकता पैदा हो, मुरली सुनने के बिना कोई रह ना सके, दौड़ दौड़ के आए वहां मुरली सुनने। क्योंकि जब भी सेंटर में कोई भी आते हैं तो देखो घर में इतनी समस्याएं परेशानियां होती हैं, किस लिए आते हैं सेंटर में? कि थोड़ी शांति के लिए, थोड़ी पावर बढ़ जाए, थोड़ा ब्राह्मणों का संग मिल जाए, थोड़ा न्यूनेस हो जाए, कोई प्यार के 2 बोल ही बोल दे, किसकी दृष्टि मारे पर पड़ जाए, अपना बहनों की नजरों से निहाल हो जाए। तुम्हारा जो एटमॉस्फेयर वहां का बहुत चार्जिंग होना चाहिए एकदम। अगर पुराने तरीके से हम चलते रहेंगे ना तो बदलाव नहीं होगा, तो धीरे धीरे वो मायूसी, जो मायूसी से मुक्ति नहीं हो पाएंगे। तो क्या बनाते हैं बाबा लक्ष्मी से? अच्छा नहीं बनाते, पक्का हो गया अभी तो, नारायण से लक्ष्मी बनाते हैं। ठीक है, ब्रह्मा बाबा से, ठीक है। तो ऐसे खेल मुरली में बहुत सारे खेल हो सकते हैं। अभी एक छोटा सा और खेल करते हैं हम, एक दो तीन चार पांच बोलेंगे, जैसे पांच बोलेंगे तो आपको क्लैपिंग करनी जोर से, ठीक है? एक दो तीन चार छ, पांच तो हमने बोला ही थी फिर भी क्लैपिंग कर दी। तो हमारी आदत होती है तुरंत करने की, पहले पूरा सुनना होता है। अच्छा एक और खेल करते हैं, खेल बड़ा जरूरी होता है ना। तो हम बोलेंगे स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और परम धाम, ठीक है? तो जैसे परम धाम बोलेंगे तो हाथ ऊपर और सारी एनर्जी बाबा को ऊपर से पकड़ के नीचे खींचना रोड और मुट्ठी में बांध लेना, ठीक है? तो ये हो गया परम धाम। फिर जब हम बोलेंगे सूक्ष्म वतन तो ऐसे करना है फरिश्ता, और जब बोलेंगे स्थूल वतन तो ताली बजाने, तीन ताली बजाने, ठीक है? तो रेडी, स्थूल वतन, परम धाम, सूक्ष्म वतन, परम धाम, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, मूल वतन मूल वतन तो परम धाम ही हो गया ना। तो शब्दों को समझना भी तो है साथ में। जैसे स्कूल में बच्चे क्या करते हैं, खेल भी जरूरी है। तो इस ज्ञान योग में ज्ञान अर्पण सेवा कहते खेलना है, तो रोचकता बनी रहती है। तो हम सबका जो जीवन है बहुत महत्वपूर्ण जीवन है, हम सब आत्माओं के साथ पूरा संसार बंधा हुआ है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे खुश हो तो संसार खुश है, तुम बच्चे दुख में हो तो संसार दुखी है, तुम शांत हो तो संसार शांति में है, तुम अशांत हो संसार अशांति में है, तुम रोते हो तो संसार रोता है, तुम हंसते हो तो संसार। अब ये अपने ऊपर है भी क्या करना है संसार का, संसार से पहले हमें स्वयं का क्या करना है। तो स्वयं के साथ हमें कुछ प्रतिज्ञा करनी है, और छोटी छोटी प्रतिज्ञा करनी है जो हम कर सके। ऐसे नहीं बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा कर देंगे सवेरे हम 2 बजे उठने के रेगुलर, क्योंकि हमें अपने आसपास की सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए अपने पुरुषार्थ को क्वालिटी वाला बनाना है, जिस पुरुषार्थ से हमारे जीवन में परिवर्तन आए, परिपक्वता आए, और धीरे 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 जब मैच्योरिटी आती जाएगी तो धीरे धीरे हमारा सहज उठना 2 बजे तक भी पहुंच जाएंगे, बड़ी बात नहीं है वो। क्योंकि जितना हम अगर अमृत वेले जल्दी उठते हैं उसके लिए बहुत ज्ञान योग चाहिए, बिना ज्ञान योग हम बैठते हैं अमृत वेले तो फिर नींद आएगी, जुट के आएंगे, और उसका असर फिर दिन में नींद आएगी, कर्म करते नींद आएगी। या तो सारे दिन में अपने को ज्ञान योग से इतना भरपूर कर ले, और जो हम अमृत वेला करते हैं उसका पूरा टाइम टेबल हो कि अगर हमको 2 घंटे बैठना है तो 2 घंटे में 120 मिनट है, तो 120 मिनट में हमको करना क्या है? 120 मिनट में उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो, 5 हिस्सों में डिवाइड कर दो, अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार, नवीनता के अनुसार, इतना समय हमको अशरीरी अवस्था का ही संकल्प करना है, बस एकदम बैठ गए मैं अशरीरी हूं, बॉडी से डिटैच, दूसरा कोई संकल्प ही नहीं, बार बार उसको रिवाइज करते जाना, करते जाना, करते जाना है, और धीरे धीरे वो अवस्था आ जाएगी। या मुझे 20 मिनट में ये इतने सोमान की माला अंदर अंदर फेरनी है, और देखना वो सोमान माला मुझे बाबा ने दी है, उस सोमान को बाबा ने मुझे फेरने के लिए बोला है, उसकी माला को मैं फेर रहा हूं, अर्थात मैं बाबा का सम्मान कर रहा हूं, उसके दिए हुए सामान को मैंने ले तो लिया लेकिन रख दिया बाजू में, मैं उसकी इंसल्ट कर रहा हूं। उसके ज्ञान को तो हमने सुन लिया सवेरे लेकिन सारा दिन हमने चिंतन नहीं किया, अर्थात उसकी इंसल्ट है वो। वो हमको सवेरे सवेरे इतने ऊंचा तोहफा देके जा रहा है, गिफ्ट देके जा रहा है, लेकिन सारे दिन हम विस्मृत रहते हैं। अगर आप मुझे को गिफ्ट देते हो आपके सामने, मैं उसको फेंक दूं, आपको कैसा लगेगा? तो बाबा हमको इतना सवेरे सवेरे ऊंची सौगात देते हैं, बाबा कहते हैं मैं हथेली पर बिस्त लेके आया हूं तुम्हारे लिए, सौगात लेके आया हूं। उससे बड़ी सौगात तो ज्ञान रत्न है, तो कम से कम 20-25 ज्ञान रत्न तो हमारे हाथ में रहे। तो सवेरे वो सम्मान की माला हमको फेरनी है, वो चिंतन करना, उसका अनुभव करना है, गहराई इसमें डूब जाना है। इतना समय सम्मान का चिंतन, इतना समय हम मुझे गुणों की माला पहननी है, इतना समय मुझे विश्व परिक्रमा करनी है, इतना समय मुझे स्वयं को शक्तियों से भरपूर कर लेना, परमात्म प्यार से इतना भरपूर कर लेना कि सारे दिन में संसार का कोई भी प्यार हमको आकर्षित ना करे। सवेरे सवेरे इस पात्र को इतना फूल कर लेना है कि दूसरा कोई संसार का कीचड़ा इसमें ठहर ना सके। भगवान ने इसको दिव्य बुद्धि का वरदान दिया हुआ है, दिव्य दृष्टि का वरदान दिया हुआ है। तो दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि को क्या मैं उसी अनुसार सारे दिन में कार्य में लगा रहा हूं, या उसकी दिव्य दृष्टि कहीं और ही तो नहीं डोलायमान होती जा रही है। सवेरे सवेरे भगवान हमारी नजरों में समा जाता है, सवेरे सवेरे भगवान हमको नजरों से निहाल कर देता है, सवेरे सवेरे वो अपना धाम छोड़ के हमको अपने समान बनाने के लिए, अपने पास समान उस सीट पर आसन पर विराजमान होने के लिए हमको तैयार कर देता है। तो कितना वो हमारा उससे लव है, उसका हमारे से कितना लव है, लेकिन क्या हमारा लव उस अनुपात में है, क्या हम उतने लबालब हो रहे हैं उस लव से? उतना स्नेह हम दूसरों को अनुभव कराते हैं, उसका स्नेह हमारे वचनों में समा रहा है ताकि दूसरों को भी वचन सत वचन का अनुभव करा सके। तो स्वयं से बातें करनी है, बड़ा कीमती जीवन है, छोटा सा जीवन है, सबको पता है संसार किस दिशा में जा रहा है और हम कौन से मोड़ पर पहुंचे हैं। तो यहां से कुछ तो अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है, ये वरदानी समय है। इस समय को इतना पूरा सफल कर लेना है कि कुछ तो परिवर्तन हमारे में दिखे, स्वयं को दिखे। जहां भी हम कदम रखें वहां परिवर्तन ही परिवर्तन देख, बोलने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ओम शांति।
प्रभु।